धावे की स्थिति है, तो दोनों चीजें हो गई। एक तरफ आप कहते कि राग द्वेष परिणाम आत्मा के हैं, दूसरी तरफ कहते कि आत्मा के नहीं है। तो कहते हमारी बात समझो आप, यही तो बहुत मुश्किल है जैन दर्शन को बस इसी जगह पर समझना। और हम लोग बहुत जल्दी धारणा बना लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, कहते हैं कि राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, लेकिन भी विभाव रूप परिणमन तो है कि नहीं, इसलिए आत्मा के हैं भी और आत्मा के नहीं भी। आत्मा के नहीं है इसलिए आत्मा से उनको जुदा किया जाता है, और आत्मा के हैं तभी तो जुदा कर पाएंगे। हम अपने मान ही ने खुद गल के हैं सुरैया, ऐसा मान ले में तो कौन होगा जो कि उसको पृथक करने का विचार करे। तो पहले मानना पड़ता है, हम बीमार हैं पहले जब मानो, लेकिन बीमार होना हमारा स्वभाव नहीं है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, तब जाके हम बीमारी से मुक्त हो पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त। हमारा बीमारी स्वभाव ही है, तब स्वास्थ्य होने की कोई चिंता ही नहीं, फिर तो अब ऐसा ही है। ऐसा भी नहीं, अगर दो में से एक मानोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। दोनों चीजों को एक शक्ति की अपेक्षा, एक अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से तो हमारा अशुद्धि ही परिणमन हो रहा है, द्रव्य गुण भी पर्याय भी अशुद्ध हैं, और शक्ति की अपेक्षा देखें तो हम अपने उस शुद्ध स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण दिया है पानी का स्वभाव कैसा है, शीतलता, लेकिन अग्नि के संपर्क में आकर के गर्म हो गया, तो क्या उसने अपने शीतलता के स्वभाव को छोड़ दिया क्या? कहते नहीं, कॉन्टेक्ट से अलग कर दो उसको अग्नि के, फिर देखो वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, वो अपने स्वभाव में जो कहते हैं इसी तरह पर्यायगत अशुद्धता तो नाश को नाश करने की क्या विधि है भैया? ऐसा मत करो, पर्यायगत ही क्यों कह रहे आप? हमारे अंदर जो भी द्रव्य गुण पर्याय में अशुद्धता आई है उसको हम निकालने के लिए क्या करें? ऐसा पृथक पृथक मत करो, हम में से कोई हमारी पर्याय अलग हो, हम में से कोई गुण अलग हो, हम में से कोई द्रव्य अलग हो, ऐसा तो है नहीं। सब एक एक साथ इतने गड्ढमड्ड हैं कि एक दूसरे को अलग कर ही नहीं सकते हैं आप। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा, बताइए द्रव्य के जो आश्रित रहते हमेशा, द्रव्य के बिना जो ना रहे, जैसे कि आप कहो कि काला रंग ले आओ, तो भाई किसी ना किसी फॉर्म में लाएंगे काला रंग, नहीं काला रंग लाओ, हमें ये चीज नहीं चाहिए काले रंग की, आप तो काला रंग ले आओ, तो ऐसे कैसे? वो तो कोई ना कोई पर्याय के साथ आएगा काला रंग, और वो पर्याय भी किसकी है? किसी ना किसी द्रव्य की होगी। आप एक को लाएंगे तीनों एक साथ आएंगे। आचार्य जी उदाहरण देते जैसे नट बोल्ट, नट बोल्ट इतने एक दूसरे में फंसे हैं, आप एक को खींचेंगे दोनों आएंगे। ठीक इसी तरह से आप द्रव्य लेंगे तो कोई ना कोई गुण है और उसकी पर्याय, आप पर्याय लेंगे तो द्रव्य और गुण है, आप गुण लेंगे तो द्रव्य और पर्याय दोनों, तीनों एक साथ होने वाली चीज। इसलिए ऐसा नहीं कहें कि पर्यायगत अशुद्धता को, बल्कि ये कहें कि मेरे भीतर जो अशुद्धता आई है उस अशुद्धता को दूर करने के लिए। भैया अशुद्धता सबसे बड़ी किस बात की है? मुंह की है। अगर देखा जाए तो सारे कर्मों का राजा मुंह है, और वो अगर हमने सबसे पहले उसी को नष्ट करना पड़ता, बाकी सब तो फिर फौरन भाग जाते हैं एक के बाद एक। अगर मोह नष्ट कर लिया, सीधे मोह को नष्ट करके बारहवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, शेष जो तीन घातीय कर्म हैं वे भी नष्ट होते हैं बारहवें गुण स्थान के अंतिम समय तक, और सीधे जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मोह जो है वो सबसे ज्यादा अपने लिए विकृति करने वाला। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में तो ज्ञान ढक गया है, ज्यादा घाटा नहीं। दर्शनावरणी कर्म के उदय में मेरा दर्शन गुण ढक गया है। वीर्यांतराय के उदय से जो है, या कि अंतराय कर्म के उदय से मेरे अपने स्वभाव की प्राप्ति में थोड़ी बाधा आ रही है, विघ्न पड़ रहा है, लेकिन मोह की वजह से तो विकृति ही हो गई, पूरा का पूरा विकृत। जैसे कि चार लड्डू हैं और तीन में से अपन को थोड़ो थोड़ो मिलो है, कोई हर्जा नहीं, और एक तो पूरो मिलो लेकिन उसमें विष मिला है, बताओ है काम का? कहते नहीं भैया, अभी थोड़ी थोड़ी ठीक है, ये तो पूरा का पूरा पूरा मिल रहा लड्डू लेकिन विष मिला हुआ। सबसे ज्यादा दर्शन मोहनी हमारी श्रद्धा को विकृत करता है, चारित्र मोहनी हमारे चारित्र को विकृत कर देता है, पूरे जीवन को विकृत करने वाला तो यही मोहनी कर्म है। इसलिए उसकी उस विकृति को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरहंत भगवान की भक्ति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव और विषयों से विरक्ति, मोह के ये लक्षण हैं। अगर ये ना हो तो अरहंत भगवान में भक्ति ना हो, जीवों पर करुणा का भाव ना हो और विषय कषाय में आसक्ति हो, यही तो मोह का लक्षण है। कहते इससे बचने के लिए अरहंत भगवान की ठाट बाट से भक्ति करो और प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखो और विषयों से आसक्त मत हो, तो मोह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दर्शन मोह तोड़ने के लिए भगवान की भक्ति, चारित्र मोह तोड़ने के लिए प्राणी मात्र से करुणा और विषयों से अनाशक्ति। इस तरह से आज के समय में सच का मार्ग कम होता जा रहा है। बात तो सही है, झूठा चालाक चापलूस व्यक्ति हमेशा ऊंचाई को छू रहा है, ऐसा क्यों है? ये तो स्वप्नों में लिखा है, चक्रवर्ती के स्वप्न है या कि चंद्रगुप्त के 16 हाँ चक्रवर्ती के स्वप्नों में लिखा है। अच्छा, वो अब हम ये भूल जाते हैं, मानो स्वप्न में लिखा, ये तो पक्का। क्यों भाई, इसमें तो किसी चंद्रगुप्त के स्वप्न 16 स्वप्न, ठीक, तो चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में आप सुधार लेंगे। आप चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में वो चक्रवर्ती निकल जाता था मुंह से। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न है, उसका फल क्या लिखा है? हाथी के ऊपर बंदर उछल कूद कर रहा और हाथी चुपचाप खड़ा। जितने सम्यक दृष्टि होंगे, सच्चा जीवन जिएंगे, ईमानदार होंगे, वे चुपचाप रहेंगे, बाकी जो है उनके ऊपर बंदर जैसे उछल कूद कर रहा है। बेईमान आदमी, चालाक आदमी, वो आराम से अपना जीवन जिएगा। ये पंचम काल में ये लिखा हुआ है, अपन देख रहे हैं वर्तमान में। शूद्र राज करेंगे, ऐसा लिखा, देख रहे हैं अपन। कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अपने देखने में ना आ रही हो। हाँ, जिसका आचरण भ्रष्ट होगा वो राज्य करेगा, कौन पर? अच्छे आचरण वाले पर राज्य करेगा, बताओ। तो इसी तरह से इसमें अपन को क्या करना चाहिए? अपन को आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ऐसा सोच करके कि ऐसा तो हो गई, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, एक चीज, और दूसरी चीज उसमें निमित्त नहीं बनना। हाँ, हम तो हमेशा सच्चाई का सम्मान ही करें। ठीक है, दुनिया अगर सच्चाई का सम्मान नहीं कर रही है, क्या करें, काल दोष है, लेकिन मैं तो हमेशा सच्चाई का ही सम्मान करूं, ऐसा हरेक कोई अपने मन में विचार रखे। स्वयं सच्चा ना बन पाऊं लेकिन सच्चाई का तो सम्मान करूंगा। स्वयं मेरा जीवन झूठा हो सकता है लेकिन झूठ को मैं सम्मानित नहीं होने दूंगा। ये चीज जो है वो अपने को महाराज सवेरे आपने प्रवचन में जो गलती होगी तो कुछ बड़ा डर लगता है। आपने अपने प्रवचन में भगवान, गुरु और धर्म, ये 3 आलंबन अपनी आत्मोन्नति के लिए सुझाए थे। अब ये सुझाए तो थे, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या प्रत्येक मुनि जिसने दिगंबर मुनि मुद्रा धारण की है वो सच्चे गुरु हैं क्या? इसकी कसौटी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कसौटी है अपने पास। तो आप तेनो चिन्न दोषे न सर्वज्ञ न गवेशिना भवितव्यम नियोगे न नान्यता याप्तता भवे। हमारे भगवान वो हैं जो 18 दोषों से रहते हैं, जिसमें जन्म मरण से और कर्मों से जो मुक्त हो गए वे हमारे भगवान। विषया सावसा तीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी प्रपद्यते। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, है? विषय आरंभ, विषयों की आशा नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहते हैं, काय में लगे रहते प्रपंच में, हाँ प्रपंच में नहीं लगे रहते, वो लगे रहते अपने ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सहा प्रशस्त थे। मेरे लिए तो गुरु वो ही हैं। आप तो पग्गम अनुलंघ्य मत दृष्टि गुरु कम नहीं, आप यही है, आप तो पग्गम अनुलंघ्य, आप तो पग मनोलंग मद्रस्ते रोधकम तत्वोपदेश कृतास्त्रम शास्त्रम कापत घट्टनम। शास्त्र की परिभाषा ये है कि भगवान के द्वारा कहा हुआ हो, किसी प्रकार के विरोध में विरोध उसमें ना आता हो, ऐसे विशेष गुण, और जो हमेशा वितरकता का उपदेश देता हो, तत्व का उपदेश देने वाली ही जिन वाणी है, वितरकता का उपदेश देने वाली। तो अपने और सरल भाषा में करने हो तो 6 ढाला में लिखा, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सार। ठीक, तीन लाइन है। कौन है देव हमारे? जिनेंद्र भगवान। गुरु कौन है? परिग्रह से रहित, अंतरंग भी और बहिरंग भी। अकेले कपड़े उतार देने से तो बहिरंग परिग्रह छूटा है, लेकिन अंतरंग में भी छूटना चाहिए हैं? ये कसौटी है उसकी। इसलिए क्या वे संसार घटाने वाले गुरु हैं? क्या हम उनका आलंबन करना चाहिए? भैया पानी क्या कहते, पानी पियो छान के, हाँ पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। तो जान लो कि अपना कल्याण इनके चरणों में होगा कि नहीं, नहीं तो अपन और प्रपंच में फंस जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दिगंबर मुद्रा जहां भी दिख जाए उस